हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद दसवा अध्याय श्लोक संख्या 23। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीतांभरधारुण बिंबफलाधरोष्ठा पुरेन्द्रसुंदरमुखात् अरविंद नेत्रा कृष्णाचरं किमपि तत्व अहम् न जानि। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुवन्ति वेदीसांगपत् क्रामोपनिषदि गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तत् गतिन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा दीवाय तस्मे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकीम्। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद 10वां अध्याय जिसका शीर्षक है द्वारिका के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रस्थान। द्वारिका की नारियां जो कि भगवान के स्वागत के लिए नीचे नहीं आ सकी थी, लज्जा के कारण छतों पर खड़ी थी और मुस्कुराकर भगवान की ओर देखकर जो वार्तालाप कर रही थी उसी के विषय में हम पढ़ रहे हैं। नंबर 21 में उन नारियों ने भगवान की निष्प्रपंच अवस्था के विषय में बताया कि ये वही भगवान हैं जो जब सारी सृष्टि निष्क्रिय हो जाती है, सुप्त अवस्था में कारण दर्शाई विष्णु के अंदर सिमट जाती है, तो यही एकमात्र वे ही अकेले विद्यमान होते हैं। क्योंकि वे परमेश्वर हैं अतएव सारे जीव उन्हीं में लीन होते हैं, मानो रात्रि में सोए हुए हों और उनकी शक्ति रुक गई हो। यानी जब प्रलय होती है तो सारे जीवों की शक्ति खत्म हो जाती है क्योंकि भगवान अपनी चेतना उसमें से निकाल देते हैं और सारे जीव जो हैं वो सुप्त अवस्था में, ना उनका नाम होता है, ना रूप होता है, ना उनका कोई क्रिया होती है, जैसे वो बिल्कुल सुप्त अवस्था में निष्प्रपंच अवस्था इसको बोलते हैं, जब सारी सृष्टि जो है वो क्रिया कार्य लेस हो जाती है, मतलब कोई कार्य नहीं करती है। तो फिर उसके बाद कहती हैं श्लोक नंबर 22 में स एव भूयो निज वीर्य चोदिताम स्वजीव मायाम प्रकृतिम सशिक्षितिम अनाम रूपात मनिरूपनात्मनि विधित समानोनुससार शास्त्र कृत। कि उसके बाद क्योंकि अब जीवों के पास न रूप है, ना नाम है, ना देह है, तो फिर उनको देह प्रदान करते हैं, यानी पुनः सृष्टि करते हैं, प्रकृति सृष्टि की इच्छा के अनुसार सृष्टि करते हैं। और जो जो जीव हैं जो कारण दक्षिण विष्णु के अंदर विश्राम कर रहे हैं उनको पुनः नाम और देह प्रदान करते हैं, उनके कर्मों के अनुसार उनको शरीर प्रदान करते हैं जिससे उनको भोग की अवस्था भोग की सुविधा प्राप्त हो, और भोग करने के बाद उन्हें वास्तविक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भगवान उन्हें शास्त्र भी देते हैं, यानी कि ताकि उन्हें पता चले जीवों को कि वास्तव में जीव कृष्ण का अंश है और उसका वास्तविक लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है। जब तक वो कृष्ण प्राप्ति नहीं करेगा तब तक उसके जीवन को कभी भी आनंद उसके जीवन में नहीं आएगा। और आज श्लोक नंबर 23 में वो कुल नारियां कह रही हैं, कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए, सवा अयम यत् पदमात्र सूरयो जितेन्द्रियानि जितमातरिश्वनः पश्यन्ति भक्त्युत् कलिमा कलितामलात्मना नन्वेषसत्त्वं परिमाष्टुमर्हति स वा अयं यत् पदमात्र सूरयो जितेन्द्रियानि जितमातरिश्वनः पश्यन्ति भक्त्युत् कलितामलात्मना नन्वेषसत्त्वं परिमाष्टुमर्हति स वा अयं यत् पदमात्र सूरयो जितेन्द्रियानि जितमातरिश्वनः पश्यन्ति भक्त्युत् कलितामलात्मना नन्वेषसत्त्वं परिमाष्टुमर्हति। वे कह रही हैं हे सख्यो, हम लोगों का परम सौभाग्य है कि हम उनका दर्शन कर रही हैं, नहीं तो ये अति दुर्लभ पुरुष हैं। अरे यही तो वो पुरुष हैं जिनके पद जिनके चरण कमल को दर्शन करने के लिए, जिनके स्वरूप को देखने के लिए सूर्य पश्यन्ति। ये कहते सवा अयम ये वही है, ये वही कृष्ण की कृपा है, भगवान के हमारे ऊपर बहुत कृपा है, ये वही है। पदम अत्र, यहाँ वही भगवान श्री कृष्ण है। ये जो सामने आप जो देख रहे हो वो जानते कौन है, सूरयो, जो बड़े बड़े सूर हैं, बड़े बड़े देवता हैं, भक्तगण हैं, ब्रह्मा नारद इंद्र, वो क्या उनके उनको भी इनके दर्शन बहुत दुर्लभ होते हैं। यानी कि वास्तव में हमारा हमारे अंदर ऐसी कोई योग्यता नहीं है कि हम भगवान के दर्शन कर सकें, परंतु ये तो उनकी अहित की कृपा है कि वो हमें दर्शन दे रहे हैं। बाकी इनके दर्शन तो करने के लिए जितेंद्रिया ने जितमातरिश्वना, यानी कि वो जो बड़े बड़े भक्त होते हैं, जो अपनी इंद्रियों को जितेंद्रिया, जो अपनी इंद्रियों को जीत देते हैं, और निर्जितम आत्मरिश्वना, मतलब जो पूर्णतया संयमित होते हैं, जो प्राण वायु को वश में कर चुके हैं, जो अपनी इंद्रियों को वश में कर चुके हैं, जितेंद्रिया निर्जितमात निश्वरा, यानी कि जो बिल्कुल संयमित होते हैं और वो जीवन, मतलब अपना जीवन जो है वो बहुत ही संयमित ढंग से गुजारते हैं, पश्यन्ति भक्त्युत, यानी कि उनके द्वारा दिखाई देते हैं, उनको ही इनके दर्शन सहजता से मिलते हैं। और दूसरे कौन, भक्तयुत, यानी कि भक्ति से उत्कलित, जीव जिनके हृदय, जिनका चित्त भक्ति से बिल्कुल उत्कंठित होता है। उत्कलित का मतलब होता है कि बिल्कुल उनके अंदर बहुत ज्यादा भगवान के लिए भक्ति होती है। अमल आत्मना, यानी उनके जिनके मन, यहाँ पर अमल आत्मना का मतलब होता है यहाँ पर बुद्धि मन जिनका बिल्कुल निर्मल है, जिनकी बुद्धि में कोई अपवित्रता नहीं है, जो बिल्कुल शुद्ध और निर्मल बुद्धि के हैं, जो जिनके हृदय भक्त्युत्कलिता, मतलब जिनके हृदय जो हैं वो भक्ति से लबालब भरे हुए हैं, वही केवल भगवान के दर्शन कर सकते हैं। बाकी हमें जो ये आज भगवान ने दर्शन दिए ना, ये तो हमारी योग्यता नहीं है, केवल उनकी अहितु की कृपा है जो हम उनके दर्शन कर सकते हैं। अर्थात यहाँ पर गोपियां बता रही हैं, ये जो कुलनारियां हैं वो बता रही हैं कि यदि किसी को भगवान के दर्शन करना है, यदि कोई चाहता है कि मुझे भगवान के दर्शन हो, तो उसके लिए उन्हें क्या चाहिए, उन्हें शुद्ध भक्ति, भक्त्युत्कलिता, अमल आत्मना, यानी कि उनके हृदय जो है वो शुद्ध भक्ति से उत्कंठित हो और उनकी बुद्धि एकदम निर्मल हो, अमल आत्मना, बुद्धि शुद्ध हो, निर्मल हो, भक्ति हो हृदय में, तभी हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। तो फिर यहाँ यह प्रश्न उठता है कि कहाँ से लाएं ऐसी बुद्धि, कहाँ से लाए वो हृदय जो भगवान की भक्ति से लबालब भरा हुआ हो, क्योंकि हमारे हृदय में तो भौतिक इच्छाएं, भौतिक कामनाएं फूल भरी हुई हैं, तो वहां पर भगवान की भक्ति के लिए तो स्थान ही नहीं है, तो फिर क्या हमें कभी भी भगवान के दर्शन नहीं होंगे। उसका उत्तर देते हुए कह रही है, नन्वीष सत्वं परिमाष्टुमर्हति, मतलब ये जो बुद्धि निर्मल चित आपको कैसे प्राप्त होगा, ननु एष, निश्चित रूप से इसी के द्वारा प्राप्त होगा, माना इन्हीं का चिंतन करने से, इन्हीं का नाम जप करने से, इनकी लीलाओं को श्रवण करने से, केवल उनके साथ संपर्क करने से, यानी बुद्धि कैसे शुद्ध होगी ये बता रही है। ननवेश सत्वम परिमाष्टमुर्हति, यानी यही एकमात्र बुद्धि को शुद्ध करते, जैसे तैसे जब हम जीव का संपर्क कृष्ण से हो जाता है तभी बुद्धि शुद्ध होती है। जब कृष्ण के साथ हमारा हृदय में किसी तरह से कृष्ण की लीलाओं को श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है, कृष्ण की नाम को जप करने का, कृष्ण की कथाओं को श्रवण करने का, कृष्ण के कीर्तन को सुनने का जब अवसर प्राप्त होता है, तो ही बुद्धि शुद्ध होती है, और कोई उपाय नहीं है। मतलब और कोई उपाय से जीव का शुद्धिकरण नहीं हो सकता, और जब तक शुद्धिकरण नहीं हो तब तक भगवान हृदय में नहीं आ सकते ना। जब हृदय शुद्ध नहीं होगा, जब हृदय के अंदर भक्ति नहीं होगी, जब बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, तब तक भगवान हृदय में नहीं आएंगे। और जब तक भगवान के साथ संपर्क नहीं होगा, तब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा, बुद्धि निर्मल नहीं होगी। इसका अर्थ ये है कि जीव चाहे जिस भी स्टेज पर है, उसे भक्ति करनी चाहिए, भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए, भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए, भगवान की लीलाओं को श्रवण करना चाहिए, भगवान के आदेशों को फॉलो करना चाहिए। भक्ति करने से ही बुद्धि शुद्ध होती है। तो यहाँ पर नन्वेश सत्वम परिमाष्टुम अर्हति का एक और भी मतलब है। यहाँ पर कह रही है कि अब ये भगवान जिनके दर्शन करने का हमें सौभाग्य मिला है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा हृदय चित्त शुद्ध होता है, निर्मल होता है, बुद्धि पवित्र होती है। तो अब तो ये जा रहे हैं, अब जब ये दूर चले जाएंगे तो फिर इनके बिना हमारी बुद्धि भी नष्ट हो जाएगी, हमारा हृदय जो है वो दुखी हो जाएगा, इनके बगैर हम कैसे रह सकेंगे। इसलिए जिधर जा रहे हैं उधर ही हमें भी जाना चाहिए, क्योंकि इनके बगैर तो रहना अब संभव नहीं है। अनुवाद देखिए, ये वे ही भगवान हैं जिनके दिव्य रूप का अनुभव बड़े बड़े भक्तों द्वारा किया जाता है, जिन्होंने कठोर भक्ति द्वारा तथा जीवन एवं इंद्रियों पर पूर्ण संयम द्वारा भौतिक चेतना से शुद्धि प्राप्त कर ली है। अस्तित्व को विमल बनाने का यही एकमात्र साधन है। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि भगवान केवल भक्ति द्वारा अपने शुद्ध रूप में जाने जा सकते हैं। भक्त्यामा अभिजानंत, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मुझे केवल भक्ति के द्वारा ही समझा जा सकता है। अतएव यहाँ पर बताया गया है कि वे ही भगवत भक्त जो कठिन भक्ति द्वारा मन में मैल को धो सकते हैं, भगवान को यथारूप अनुभव कर सकते हैं। यहाँ साफ साफ लिखा, पश्यन्ति भक्त्युत कलितामलात्मना, वो देखते हैं जिनके हृदय भक्ति से परिपूर्ण होते हैं, जिनकी बुद्धि विमल होती है, वे पश्यन्ति, पश्यन्ति का मतलब है वो भगवान को देख सकते हैं। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, जो कठिन भक्ति द्वारा मन के मेल को धो सकते हैं, भगवान को यथारूप में अनुभव करते हैं। जितेंद्रिय का अर्थ है इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रखने वाला। इंद्रियां शरीर के सक्रिय अंग हैं और उनके कार्यों को रोक पाना संभव नहीं है। इंद्रियों को निष्क्रिय बनाने के लिए योग के कृत्रिम साधन विश्वामित्र मुनि जैसे महान योगी तक से सर्वथा निष्फल हुए हैं। विश्वामित्र मुनि ने योगिक समाधि से इंद्रियों को वश में कर रखा था, किंतु जब उनकी भेंट मैनिका यानी स्वर्ग की अप्सरा से हुई तो वे काम के शिकार हो गए और इंद्रियों को वश में करने की उनकी कृत्रिम विधि असफल हो गई। लेकिन शुद्ध भक्त में ऐसा नहीं होता कि कृत्रिम साधन से इंद्रियों को कार्य करने से रोका जाए, अपितु उन्हें अच्छे कार्यों में व्यस्त रखा जाता है। जब इंद्रियां अधिक आकर्षक कार्यों में लग जाती हैं, तो उन्हीं निष्कृष्ट कार्यों के प्रति उनके उन्मुख होने की संभावना नहीं रह जाती। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत सुंदर सिद्धांत दे रहे हैं कि हम योगियों और तपस्वियों के भांति इंद्रियों को केवल निष्क्रिय नहीं बनाना है, क्योंकि इंद्रियां जो है वो सक्रिय हैं, उन्हें कार्य, आंखों को रूप चाहिए, कर्णों को शब्द चाहिए, जिह्वा को टेस्ट चाहिए और ये त्वचा को स्पर्श चाहिए। तो यदि उनको नहीं देंगे, कृत्रिम विधि से उनको रोकने का प्रयास करेंगे, तो कैसे करना है उनको? रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अगर उनको और भी टेस्टी चीज दी जाए, यानी कि नेत्रों को भौतिक दर्शन की बदली में भगवान के सुंदर स्वरूप के दर्शन कराए जाए, कर्णों को भौतिक निंदाओं के, भौतिक वस्तुओं के विषय में श्रवण करने के बजाय भगवान की कथाओं को श्रवण करने का अवसर प्रदान किया जाए, जीवा को भौतिक निंदा करने से, भौतिक प्रजल्प करने की बजाय भगवान के पवित्र नाम का जप करने का अवसर दिया जाए, और हमारी त्वचा को, हमारे हाथों को भक्तों के चरण स्पर्श करने का अवसर प्रदान किया जाए, तो उसमें वो आनंद है कि भौतिक वस्तुओं की ओर आसक्ति स्वतः समाप्त हो जाएगी, क्योंकि रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्त। जब परम वस्तु प्राप्त होती है तो निष्कृष्ट वस्तु की ओर से हमारा आकर्षण स्वतः खत्म हो जाता है। श्री प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि इंद्रियों को अच्छे कार्यों द्वारा ही वश में रखा जा सकता है। भक्ति की अनिवार्यता है कि इंद्रियों को विमल किया जाए या भक्ति कार्यों में लगाया जाए। भक्ति कभी भी निष्क्रियता की द्योतक नहीं होती, यानी कि ऐसा नहीं है कि हम भक्ति करें और अपनी इंद्रियों को सब कुछ करने से रोक दें। इंद्रियों को उनका विषय प्रदान करो, लेकिन वो विषय कृष्ण से संबंधित हो, तो हमारी बुद्धि भी निर्मल हो जाएगी, हमारा हृदय भी पवित्र हो जाएगा। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान की सेवा में जो कुछ भी किया जाता है वह तुरंत ही उसकी भौतिक प्रकृति से पवित्र हो जाता है। अब जैसे इंद्रियों को खाने की इच्छा है और हम उनको भौतिक वस्तुएं खिलाने के बदले में भगवान का प्रसाद खिलाएंगे, तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब भगवान की सेवा में जो कुछ भी किया जाता है तो वो तुरंत उसकी भौतिक प्रकृति से पवित्र हो जाता है। फिर प्रसाद तो साधारण भोजन नहीं होता है, वो तो भगवान की कृपा होती है। जब भगवान का प्रसाद हम खाते तो क्या होता है, शरीर विद्या जा जडेन्द्रियता है काल, जीवे भले विषय सागरे तार मध्य जीवाति लोभ माया सुदुर्मति, ताको जीते कठिन संसारे कृष्ण बड़ो दयामय, करिवारे जिवा जय सुप्रसाद अन्न दिलोगाए। जब इतना भगवान का पवित्र प्रसाद हमें खाने को मिलता है तो जीवा जो कि जिसको कंट्रोल करना बहुत कठिन है वो स्वतः कंट्रोल में आ जाती है। तो ये स्वल्प पुण्य विताम राजन विश्वास होना चाहिए, तो जो स्वल्प पुण्य, जिनके पास पुण्यों का पुंज नहीं होता है, जिनके पास बहुत ज्यादा पुण्य नहीं होते, उनको तो ये बात समझ में भी नहीं आती कि प्रसाद में और साधारण भोजन में क्या अंतर है। लेकिन वास्तविक जो भक्त होता है वो जानता है कि जब भी कोई वस्तु भगवान के साथ संपर्क में आती है, भगवान की सेवा में आ जाती है, जो कुछ भी हो जाए, तो उसकी भौतिक प्रकृति से वो पवित्र हो जाती है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, भौतिक बुद्धि अज्ञान के कारण है, वासुदेव के परे कुछ भी नहीं है। ग्रहणशील इंद्रियों के दीर्घकालीन अभ्यास से ही विद्वान के हृदय में धीरे धीरे वासुदेव अनुभूति होती है, लेकिन इस विधि का अंत वासुदेव ही सब कुछ है इसे स्वीकार करने के ज्ञान में होता है। अभी भले ही वास्तविक लक्ष्य क्या है, जब हमें पता चले वासुदेव सर्वम इति, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि सारे ज्ञान का वास्तविक लक्ष्य है कि हमें ये बात समझ में आनी चाहिए। भगवान कहते हैं, भवनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत बहुत जन्मों के बाद दीर्घकालीन अभ्यास के बाद किसी को ये समझ में आता है कि कृष्ण ही सब कुछ है। तो बड़े बड़े ज्ञानी जब बहुत ज्यादा तपस्या कर लेते हैं, बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो उस ज्ञान का अंत कहां तक होता है, वासुदेव ही सब कुछ है इसे स्वीकार करने के ज्ञान में होता है। परंतु आगे श्री प्रभुपाद जी अत्यंत सुंदर बात कहते हैं कि भक्ति में यही विधि शुरू शुरू से स्वीकार की जाती है, मतलब भक्ति में कदम रखते ही आपको पहली बात बताई जाती है कि कृष्ण ही सब कुछ है। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, कृष्ण ही सब कुछ है, केवल कृष्ण ही भगवान है, बाकी सब भगवान के अंश और कलाएं हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो भक्ति भक्ति में ये सब वो जो दूसरे साधनों से बहुत कठिन कठिन उपायों के बाद समझ में आता है, भक्ति से बहुत सरलता से। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति में यही विधि शुरू से स्वीकार की जाती है, भगवत कृपा से अंतःकरण में भगवान के आदेश से सारा वास्तविक ज्ञान प्रकट हो जाता है। जब भक्त भगवान की भक्ति को स्वीकार करता है तो भगवान कहते हैं तेषां सतत युक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम्। जब भगवान प्रेम से भगवान का भक्त भगवान का भजन करता है, भगवान के नाम का स्मरण करता है, तो क्या होता है, भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उसकी बुद्धि को चेंज कर देता हूँ। जिस बुद्धि से वो संसार को समझता था वो बुद्धि तो मुझे समझने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसीलिए मैं उसे दूसरी बुद्धि देता हूँ, ये नमः उपयान्ति ते, जिसे वो मुझे समझ सकता है, मुझे प्राप्त कर सकता है। तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि अंतःकरण में भगवान के आदेश से सारा वास्तविक ज्ञान प्रकट हो जाता है, अतएव भक्ति द्वारा इंद्रियों को वश में करना एकमात्र सरलतम साधन है। जैसा कि यहाँ पर कुल नारियां बता रही हैं, स्त्रियां जो वो कह रही हैं नन्वेश सत्वम परिमाष्टुमर्हति का मतलब होता है कि मन को पूरी तरह से स्वच्छ करना, हृदय को एकदम पवित्र करना और बुद्धि को निर्मल करने का नन्वेश सत्वम एकमात्र यही कृष्ण ही उपाय है। मतलब एकमात्र जब हम कृष्ण से संपर्क करेंगे, कृष्ण की भक्ति करेंगे, तभी हमारा हृदय पवित्र होगा, तभी बुद्धि निर्मल होगी, और जब हृदय पवित्र होगा बुद्धि निर्मल होगी तभी हम कृष्ण को प्राप्त कर सकेंगे, तभी हम कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए हमें सदैव भगवान की पवित्र कथाओं को श्रवण करना चाहिए, भगवान के पवित्र नाम को जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकमात्र यही साधन है कृष्ण को प्राप्त करने का, इसके अतिरिक्त और कोई साधन नहीं, कोई साधन नहीं और कोई साधन नहीं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं। हरे कृष्ण।